अब पता चल गया कि अल्लाह ताला ने मेरी बात सुन ली है, मेरी दुआ सुन ली है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने वो इंतजाम भी फरमा दिया, और वह अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, और हमने भेजा इसको तरफ 1,00,000 के या ज्यादा, यानी दोबारा उनको अल्लाह ताला ने उनकी कौम की तरफ भेज दिया, जो कि उनकी तादाद कितनी थी, नैनवा की जो बस्ती थी जहां पे यूनुस अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था, 1,00,000 से ऊपर थे कुछ लोग, वो 1,00,000 से ज्यादा, मोर देन 100,000 पीपल थे, उनकी तरफ अल्लाह ताला ने दोबारा भेज दिया, अल्लाह ताला ने दोबारा उनको चुन लिया, जैसे सूरह कलम में आता है अल्लाह ताला ने दोबारा उनको चुन लिया, दोबारा सालिहीन में शामिल फरमा लिया। ना ना ना, 3 बार तकरार आई, अरसल ना है ना, और अम्बत ना, और नबज ना, हाँ अल्लाह फरमा रहे हमने हमने हमने, ये सारी रहमतें की। फिर अल्लाह की रहमत भी जोश में आ गई ना, जब बंदा पलट आया तो अल्लाह ताला ऐसे माफ फरमाते हैं फिर कि वो पिछली सारी कोई भी चीजें फिर वापस दे दी। लेकिन आप एक बात यहां से बहुत सोचने की है, समझने की है कि मसला हुआ कहाँ था। मसला ये हुआ था कि यूनुस अलैहिस्सलाम सबर नहीं कर पाए थे, इस्तकामत से नहीं रह पाए थे, वहां पे निकल खड़े हुए थे। इससे हमें पता चलता है नेकी के रास्ते में दीन की खिदमत कर रहे हैं आप, या कोई दीन का काम कर रहे हैं, कोई भी नेकी का काम कर रहे हैं, उसमें इस्तकामत जरूरी है कि ऑल द वे इंसान जाए, उसको मुकम्मल करे। ये बीच में जो छोड़ के इंसान चल पड़ता है वो सही नहीं होता, वो खसारा लाता है, उसका फायदा नहीं होता। हम बाज़ दफा हम अपने आप को देखें, और कोई ये ना सोचे हाय यूनुस अलैहिस्सलाम देखो उन्होंने कितनी बेसब्री कर ली, या पता नहीं हम तो बड़े सब्र करने वाले हैं, हम तो बढ़िया से, ये कभी भी दिल में ना ख्याल आए क्यों उन्होंने ऐसा किया था, क्यों उन्होंने इतनी जल्दी कर दी थी। इसलिए कि हम अपने आप को देखें तो जरा जरा सी बात के ऊपर हम नेकी के कामों को छोड़ के भाग जाते, किसी ने मुंह हमसे बना लिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरी तरफ टेढ़ी आंख से देख लिया, उस वो मेरे से रूड हो गया, अच्छा अब मैं जा रही हूं, अब मेरे से नहीं होता। दीन के काम में नेकी में इस्तकामत मांगनी चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े अच्छे अच्छे कामों को शुरू तो करते हैं लेकिन बस कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, और वो छोड़ के भाग जाते हैं। कोई भी रीजन हो सकता, बस नहीं अब नहीं, अब यहाँ पे देखें, अब लोग ऐसे थे यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए कि नहीं इनके साथ तो अब काम करने का कोई फायदा नहीं, इन्होंने अब नहीं मानना, चले लोगों के रवैये की वजह से, लोगों की उससे मायूस होके कि ये नहीं अब समझेंगे। तो हमारे पास जिंदगी में कई मामलात आते हैं कि हम उनको एक्सक्यूज बना के जो नेकी का रास्ता है वो छोड़ देते। अब आप देख लें कई लोग आते हैं अल्लाह की किताब की तरफ, सीखने की तरफ, एक दिन बस मुश्किल लगा, हाँ ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब हम तो बड़े मसरूफ हो गए हैं, हम तो ऐसे हो गया, बहुत सारे एक्सक्यूज है, घबरा के छोड़ के चले गए। तो किसका नुकसान किया, अपना किया, किसी और का नहीं नुकसान होता, अपना नुकसान करते। देखिए यहाँ पे हमें इनसे सीखना चाहिए, यूनुस अलैहिस्सलाम से, कि काम शुरू करो तो उसको कमिटेड होके करो, उसको पूरा करो, घबराओ नहीं, फिर ना ही गुस्से में आके, ना ही जल्दबाजी में आके कोई ऐसा स्टेप उठा लेना कि बस छोड़ छाड़ के चले जाना। ये बेसब्रियां, ये गुस्सा, ये जल्दबाजियां, ये अच्छे भले किए कराए काम को बिगाड़ देती हैं, वो पिछला किया कराया भी जाता है, ये नहीं इंसान सोचता, सब वेस्ट जाता है, छोड़ छाड़ के चले गए। और ये अक्सर लोगों का मसला बन चुका है कि इस्तकामत नहीं है, बस जम के करना ही नहीं है कोई काम, कुछ इतने हो जाते हैं शुरू के अंदर, जोश इतना होता है, एक दिन इतना कर लेते फिर उसके बाद बस कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला को वो काम पसंद है जो मुस्तकिल तौर पे किया जाए, चाहे वो कम हो, चाहे वो कम हो। तो ये जो बड़े काम मुझे मिल जाए, बड़ी चीज मैं कर लूं, ये उसके अंदर अगर आप में इस्तकामत ही नहीं है तो फिर वो बड़े कामों लेने का फायदा नहीं है। आप चाहे थोड़ा काम करें लेकिन मुसलसल करें। और यहां से पता चलता है कि तस्बीह कितने बड़ा अमल है ना, जो इंसान को किसी भी मुश्किल से निकाल सकता है। इसलिए इसकी तरफ आना चाहिए बजाय उल्टे सीधे और रास्ते ढूंढने के, अब ऐसे कर ले, कोई लोग मशवरे देते रहते ना, तुम फलानी जगह चली जाओ, ये जो भी उनके मशवरे होते हैं उनको सुनने की बजाय अल्लाह की तरफ आए, उसकी तस्बीह बयान करें। अगर अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाल सकता है, वो अल्लाह हमें भी निकाल सकता है। और ये भी पता चलता है हमें कि जो ये तरीके हैं 1.25 लाख पढ़ने के और इस तरह पढ़ने के, इनको छोड़ के हमें इस कलमे को समझना चाहिए, इसको सही तरह से सीखना चाहिए। ये कलमा क्या हमें कहता है, क्या हमें बताता है, इसकी रूह को जाने और इसको उस तरह से पढ़ें, ना कि ये लोगों से पढ़ाना या 1.25 लाख की तस्बीहां कराना। तो अल्लाह ताला ने देखें फिर उनको वापस उनकी कौम की तरफ भेज दिया। और ये जैसे हमें पता चलता है कि वो कौम जो थी, जब उन्होंने फिर यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद अजाब को देख लिया कि अजाब आ रहा है हमारी तरफ, उन्होंने तो अपने अच्छे कपड़े उतार के गुदड़ियां सी पहन ली, पुराने फटे हुए को पहन के अपने जानवर बीवी बच्चे सब खानदान लेकर घरों से निकल खड़े हुए, अपने शहर में नहीं रहे वो, घरों से निकल खड़े हुए चटियल मैदान में सहरा में चले गए। वो वहां पे जो उन्होंने दुहाइयां देनी शुरू की और कोई ना खा रहा था ना पी रहा था, ना जानवरों को खिला पिला रहे थे ना बच्चों को खिला पिला रहे थे, और सब रो रहे थे, जानवर भी करा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं बिलक रहे हैं, खुद भी आहो जारियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फिर उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया, फआमनु फमत्तअनाहुम इला हीन, वो ईमान ले आए फिर तो हमने उनको फायदा दिया एक वक्त मुकर्रर तक, यानी हमने उनको फिर जीने का मौका दिया। ठीक है, मर तो सबने जाना है, वो भी चले गए दुनिया से, लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि एक तबई मौत मरना होता है वो ज्यादा बेहतर है या कोई अजाब आके पूरी की पूरी कौम को वाइप आउट कर दिया जाए उस वहशतनाक अजाब में, क्या ये बेहतर है? तो मौत तो आनी है, लेकिन एक वो मौत है जो अल्लाह की तरफ से नेचुरली एक आती है, वो इंसान के लिए रहमत होती है, ये जो है ये अजाब है। तो इसलिए ऐसी जब इंसान अल्लाह की तरफ पलट आता है तो अल्लाह ताला इस तरह से फिर कदरदानी फरमाते हैं, अल्लाह ने उनको जीने का मौका दिया। और ये वाहिद कौम है दुनिया के अंदर, एक कौम है सिर्फ कि जिसने अजाब देखा लेकिन अजाब इनके ऊपर से टल गया देखने के बावजूद, बाकी कोई कौम ऐसी नहीं है कि जो अजाब को देखकर बची हो, उसके बाद उनके ऊपर जरूर फिर अजाब आ जाता था। जो दीन की दावत देने वाले हैं उनको भी यहां से सबक मिला ना, कि हमने चाहे लोग हमें आगे से कोई भी रवैये दिखाएं, तबलीग करते वक्त लोगों को दावत देते वक्त कभी मायूस नहीं होना, कभी इस काम को छोड़ना नहीं, चाहे कुरान का कोई काम हो, चाहे कुरान की तालीम का हो देने का या खुद सीखने का, या ये सिलसिला हमारी पूरी जिंदगी तक रहना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये चलना चाहिए। ये कोई दूसरी दुनिया की तालीम की तरह कोई एफ ए बी एम ए नहीं है कि आपने एम ए एक दफा कर लिया बार बार थोड़ी करेंगे, मैट्रिक एक दफा कर लिया अब 2-3 दफा तो कोई नहीं मैट्रिक करता, ये वो नहीं है, ये अल्लाह के दीन का काम है। इसको ये दुआ करनी चाहिए आखिर दम तक मेरे साथ रहे, अल्लाह मैं इससे कभी ना हटूं, इसी रास्ते पर मुझे रखना, क्योंकि हम सबको रिमाइंडर चाहिए, हम सबको तज़कीर चाहिए, हम सब भूल जाने वाले, जो भूल जाने वाला है उसी को रिमाइंडर चाहिए होता ना। और कौन कह सकता है कि मैं तो कभी भूलती नहीं, मुझे सब सबक हर चीज याद रहती है। तो सबर से चलते रहना है, सबर से इस सफर को जारी रखना है हत्ता के अल्लाह ताला से जा मिले, और फिर हम जाके ये कह सकते हैं कि अल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे, हम चलते रहे, चाहे हम गिरे फिर उठे फिर तेरे ही रास्ते पर चलते रहे आखिर सांस तक, तो तू अब हमें बख्श देना, फिर तो कोई कहने की बात बनती है। और जो नहीं एक दिन कोशिश की फिर अगले दिन बस मायूस होके बैठ गए, या किसी के रवैये से बद्दिल हो गए, या भाग गए वैसे ही अपने बड़े बड़ा मुश्किल बड़ा सख्त बड़ा ये करके, तो वो क्या उनको याद रहेगा? सर शैतान तो हमारे पीछे लगा हुआ है, वो तो बार बार हमें भुलाता है। फिर आप यहाँ पे देखें अंबिया की तबलीग कैसी है कि लोगों के कितने भी रवैये हैं कैसे भी हैं वो बताते जा रहे हैं, चाहे आप नूह अलैहिस्सलाम को ले लें, चाहे आप और पैगंबरों को ले लें, जितने भी पैगंबर हैं वो बताते रहे लोगों को, समझाते रहे लोगों को, उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो लगे रहे अपनी कोशिशों में। हमारे पास कई दफा अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि हम लोगों को बताएं, उनको पैगाम दें, उनको अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएं, चलो उनको कुरान की दावत दे दें, लेकिन हम बौदर ही नहीं करते। हमें ये कोई ना इसकी कोई फिक्र है, ना हमें इस चीज का कोई एहसास होता है कि हमें हमारा भी कोई ये काम है, हमारी भी कोई ये जिम्मेदारी है कि हमने लोगों को बुलाना है, हम आगे बढ़ के लोगों को इसकी दावत दें, हम पैगंबरों वाला काम करें। चाहे वो ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन चलो वो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने वाली बात है कि हम कुछ तो करें, हम अपनी जितनी भी हमारे पास पावर है हम उसके मुताबिक हम लोगों को इस रास्ते की दावत देने वाले बन जाएं, दाई लल्लाह बन जाएं। क्या ये तमन्ना नहीं आती दिल में? कितनी दावतों में हम जाते हैं, कितनी जगह हम उठते बैठते हैं, क्या आज तक हमने सब लोगों को पैगाम दे दिया? क्या हमने वाकई उस तरह से मोटिवेट किया लोगों को कि जैसे अगर हमारा बिजनेस होता और उसमें हम लोगों को लेकर आते तो हमें नफा होता, हर बंदे के आने पे हमें हजार हजार डॉलर मिलता, तो हम कैसे लोगों को कन्विंस करते, कैसे लोगों को आगे उनके प्यार और मोहब्बत से बीच बीच जाते और उनको कहते हैं कि हमें पता है कि एक बंदा भी मेरी वजह से आ गया, मेरा तो $1,000 बन गया ना। क्या उस तरह की तड़प और उस तरह की मेहनत और उस तरह से मोटिवेशन हम देते हैं? फिर क्या उस तरह से मेहनत करते हैं हम? तभी पता चल जाता है ना कि माल की मोहब्बत कितनी है हमारे दिल में और वाकई अपनी आखरत की तड़प कितनी है हमारे दिल में, आखरत बना लेने, वहां के अजर लेने की कितनी तड़प है, कितनी तमन्ना है। $1,000 मिले तो आपको यहाँ पे लोगों को यानी लाइनें लग जाएंगी, लोग इतना हजूम हो जाएगा कि हाँ अगर हम ये ऐलान कर दें कि जो एक एक बंदे को लेकर आएगा उसको इतने इतने मिलेंगे पैसे, लोग दरवाजे तोड़ देंगे कि नहीं हमें इस चीज के लिए हायर करें। क्या अल्लाह के नाम की पुकार लगाने के लिए कोई नहीं है? अल्लाह ताला जो अजर देगा ना उसकी वसत जमीन और आसमान से ज्यादा है, इतना वसी है वो जन्नत जो उसने अजर देना है, क्या हजार और क्या लाख डॉलर, इसकी क्या वैल्यू है उस जन्नत के सामने कि अल्लाह की जन्नत में कोड़ा रखने की जगह भी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे ज्यादा कीमती है। इतनी छोटी सी पीस ऑफ लैंड, इतनी छोटी सी जगह, उसका क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम इन पैसों के साथ? इसके बावजूद हमारे दिल में कितनी तमन्नाएं हैं, कितना हमें वो होता है, मोटिवेशन होती है ये काम करने की कि हमें वो अजर मिल जाए, इसके लिए मैं करूं, मैं बताऊं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूं, मैं किसी जगह बैठूं, मैं किसी जगह कहीं सफर कर रही हूं, कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं विजिट कर रही हूं, किसी डॉक्टर के ऑफिस में बैठी हुई हूं, किसी ट्रेन में बैठी हुई हूं, किसी जगह पे भी हूं, किसी मस्जिद में बैठी हुई हूं, कहीं पे भी हूं, किसी दावत पे गई हुई हूं, किसी शादी में गई हुई हूं, मैं अपना काम करूं, इसकी कितनी तड़प है, कितने लोगों में है ये तड़प? अगर नहीं है तो अंबिया वाली तड़प तो नहीं है, अगर नहीं है तो इस काफिले में तो नहीं है जो दायान का काफिला है, अल्लाह की तरफ बुलाने वालों का काफिला है, अल्लाह के नाम के फकीरों का काफिला है। कि कितनी खुशकिस्मती है कि लोग, दूसरे लोग गलियों और बाजारों में फिरें एक एक रोटी के लिए पुकार लगाते हुए, एक एक रोटी मांगते हुए, ये फकीर हैं वो जो एक रोटी के फकीर हैं, और कोई लोग हैं जो अल्लाह के नाम के फकीर हैं, वो अल्लाह के नाम की पुकार लगाते हैं हर तरफ, वो सदाएं देते हैं अल्लाह के नाम की कि लोगों आ जाओ अल्लाह की तरफ, कितनी खुशकिस्मती। अगर हम उस काफले में एंड पे भी हो जाए ना तो इसको अपने लिए बहुत बड़ी सादत समझे, शुक्र है कि हम उसमें शामिल तो हो गए। एक जहाज है जिसके अंदर कोई लोग हैं जो फर्स्ट क्लास में, कोई लोग हैं जो बिजनेस क्लास में, उनको इकोनॉमी में भी पीछे दुम पे भी कोई बैठ जाए तो वो भी उस जहाज में तो है ना, हम इस काफले का हिस्सा तो बन जाए, जितनी अपनी एफर्ट है उसको लगाए, ये पैगंबरों वाला काम है, ये वो लगन है, पैगंबरों ने छोड़ा नहीं, चाहे वो उनकी बेइज्जतियां ही क्यों ना हो, चाहे लोगों ने कुछ भी इनको कहा, क्या क्या अलकाबात नहीं दिए, कभी जादूगर, कभी काहिन, कभी कुछ, क्या उन्होंने छोड़ दिया ये काम? क्या वो शर्माए ये काम करने से? हम क्यों शर्माते? और ये काम ना पहले आसान था ना आज आसान है, इसलिए कोई फूलों का हार तो पहनाने नहीं लगा हमें, अगर हम ये काम करेंगे, और ना ही हमें इसकी ही तड़प रखनी चाहिए, ना ही हमें इसकी कोई ख्वाहिश होनी चाहिए, बस ये है कि अल्लाह कबूल कर ले। तो इसको मिशन बनाए, ये है नबियों वाली जिंदगियां। और नबियों वाली जिंदगियां हर हुक्म पे समेना वाताना करने वाली, ना कोई दलील मांगते थे, ना कोई बात कहते थे, ना कोई क्यों, हाँ कैसे, ये क्यों, वो क्यों, कुछ भी नहीं। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लें, कैसी समेना आताना वाली जिंदगी है, कैसी झुक जाने वाली जिंदगी है, कि किसी बात में अगला क्वेश्चन ही नहीं, अल्लाह बता इसका फायदा क्या होगा, तुझे क्या मिलेगा ये करके, मेरा बेटा लेके तुझे क्या मिलेगा, नहीं, ना कोई बहाना है, कोई मजबूरी नहीं बताई उन्होंने, कोई सवाल नहीं रखा उन्होंने, बस करते चले गए, करते चले गए। हम एक एक चीज के ऊपर देखें कि कैसे कैसे हम एक्सक्यूजेस देते हैं, कैसे कैसे हम बहाने करते हैं, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे है, क्योंकि ये है, वो है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द किया, अल्लाह ताला ने उनको मुश्किलों से भी निकाला। कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में है तो उनको आग से निकाला, इस्माइल अलैहिस्सलाम छुरी तले हैं वहां से उनको सलामत रखा, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन से सलामत रखा, इनको देख लेंगे यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में सलामत रखा, तो अल्लाह ताला कैसे फिर सलामत रखता है, अल्लाह कैसे फिर हर कर्ब से निजात देता है। कोई भी कर्ब अजीम में अगर मुब्तला है तो वो भी मायूस ना हो, अल्लाह उसको भी निकाल सकता है। मगर ये वाली जिंदगियां तो हों पहले, जैसे इन्होंने टोटली अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपनी मर्जियों को सरेंडर कर दिया, तब नतीजे निकलते हैं, तब ऐसे होता है। हम चाहते तो अपने लिए सब जन्नतुल फिरदौस है, और इसकी दुआएं भी करते हैं, और हम दूसरों को भी ये दुआएं देते हैं, मगर क्या हमारी जिंदगियां, हमारी हालतें, हमारे आमाल इस बात को साबित करते हैं कि हम अल फिरदौस के रास्ते के मुसाफिर हैं? क्या ऐसा है? अल्लाहु अकबर। और देखें, इनमें पैगंबरों में ये जो खूबियां थी ना, ये जो सबर की या एहसान की या अल्लाह की तरफ रुजू करने की, ये मुस्तकिल थी। ये कोई ऐसा नहीं था कि एक दिन तो किया बड़ा सबर, अगले दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं था। एक दिन अल्लाह पे बड़ा तवक्कुल है, अगले दिन कुछ और डिस्ट्रैक्शंस हो गई, नहीं, हमेशा मुसलसल ये मुस्तकिल तौर पे उनकी जिंदगियों का हिस्सा है। फिर देखिए ना, अपनी मर्जी को बार बार कुर्बान करते हैं, अपना दिल, क्या किसका दिल नहीं चाहता अपना, अगर इकलौता बच्चा हो तो अपने पास रखे उसको, अपनी आंखों के सामने रखे उसको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो छोड़ के इतनी दूर आ गए, तो किसका दिल चाहेगा जुदाई बर्दाश्त करने का। वो कौन सा वहां पे कोई यानी कोई डिग्रियां ले रहे थे, या वहां पे कोई कोई और ऐसा कोई काम था जो वहां पे करना था, चटियल मैदान, ना वहां पे कुछ है, ना खाने को, ना पीने को, ना इंसान, कोई बंदा बशर नहीं है वहां पे। वहां पे कौन सी ऐसी चीज मिल रही थी कि वो इंसान सवाल कर सकता है ना, यहाँ पे क्या फायदा है इनको छोड़ने का, इसका फायदा पहले तो पता चले ना कि यहाँ पे क्या क्या इनको मिलेगा, या तो मैं खुद भी मूव हो जाऊं। नहीं, आप वहां रहेंगे, इनको यहाँ छोड़ के जाएं, नहीं तो इसका फायदा क्या होगा। हमारे जैसे तो पहले सबसे कोई अल्लाह का हुक्म आ जाए ना, हम कहते पहले हमें बताओ इसका फायदा क्या होगा। मैं कहती हूँ कोई ना फायदा तुम्हें नजर आए, तुम्हें फायदे नहीं, हर चीज में हमने एक निकाले में ना, इसका ये हेल्थ बेनिफिट है, उसका वो है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ने पूछे कोई बेनिफिट्स, हम तो बेचारे ढूंढ ढूंढ के लाते, लोगों को कन्विंस करने की खातिर वो रोजा भी रख ले क्योंकि उसके इतने बेनिफिट है, वो ये ना करे इसका इतना बेनिफिट है, वो कोई जिना ना करे उसके देखो ये कितना बेनिफिट है, तुम ऐसी बीमारियों से बच जाओगे, कोई शराब ना पिए देखो इसका कितना बेनिफिट है, देखो ना तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। वो भाई कोई बेनिफिट भी ना हो, सब बेनिफिट्स को आग भी लग जाए, तब भी क्या इतना काफी नहीं है कि मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, बस मैंने अपना सर झुका दिया। आई डोंट केयर हिजाब का क्या बेनिफिट है, आई डोंट केयर के रोजे का क्या बेनिफिट है, आई डोंट केयर के नमाज का क्या बेनिफिट है, आई डोंट केयर कि ये चीजें छोड़ने का क्या बेनिफिट है, म्यूजिक छोड़ने का क्या बेनिफिट है, और खराबियां छोड़ने का क्या बेनिफिट, मुझे नहीं इससे कोई सरोकार, बस मेरे अल्लाह ने हुक्म दे दिया, दैट्स इट। ये है पैगंबरों वाली इताअत। मेरी और आपकी क्या इताअत है कि जिसके अंदर हजार हमें बतानी, दूसरों को हमें चीजें बतानी पड़ती हैं, फायदे बताने पड़ते हैं, तब हम जाके कहीं सोच समझ के फिर डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसका ये बेनिफिट है, चलो ठीक है फिर अब मैं कर लेती हूँ। یہ کون سی اطاعت ہے؟ اطاعت تو وہ ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آئے اور ہم اگلی دفعہ آنکھ ایک دفعہ بھی کوئی چیز سوچنے سے پہلے، خیال سے بھی پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہم کہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قسم کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس طرح تیار ہوتے ہیں، جو ایسے جھکے میں ہیں؟ ہم بتائیں ہم میں سے کتنے ایسے جن کے لیے کسی لاجک کی ضرورت نہیں، جن کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، جن کے لیے کوئی ایکسکیوزز بتانے کی، کوئی بینیفٹس بتانے کی، کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں۔ بس وہ تو پہلے تیار بیٹھے ہوئے، اللہ کا کوئی حکم سنے تو ہم مانیں۔ کتنے ایسے لوگ بتائیں، پیغمبر تو ایسے تھے، جنت الفردوس کے تو یہ ہیں، یہ زندگیاں جنت الفردوس والی۔ ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ کتنے ہی سارے اللہ کے حکم ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ان پہ سے گزرتے بھی جا رہے ہیں، وی ڈونٹ کیئر، وہ بار بار آ بھی رہے ہیں، ہم پھر وہ آنکھیں بند کر کر کے گزرتے جا رہے ہیں، وی ڈونٹ کیئر۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ہم پیغمبر جتنے تو نہیں نہ ہو سکتے، ہاں پیغمبر جتنے نہیں ہو سکتے تو پھر ویسی چیزوں کی بھی تمنا نہ رکھو، یا نہ کہو کہ اللہ ہمیں تو فردوس دے دینا، فردوس ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ پھر انہوں نے تو اپنی مرضیاں قربان کی، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے، اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے، کہاں کہاں نہیں اپنی مرضیاں انہوں نے قربان کی ہیں، تب وہ بنتے ہیں یہ۔ انہوں نے اختیار ہوتے ہوئے خود کو بے اختیار کر دیا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتی، ویسے ہی ہے جیسے تو نے فرما دیا، جو تو نے کہہ دیا بس وہی ہے۔ وہ جانتے تھے ہمارا رب ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا، وہ جو ہمارے ساتھ کرتا اس میں ہی ہماری بہتری ہے، وہی ہمارے لیے اچھا ہے، وہ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتے، اس لیے بلائنڈلی جس حال میں بھی وہ مجھے رکھے میں اس میں ہی راضی ہوں، راضی برضا ہمیشہ رہے، تو اس لیے کوئی مشکل ہی نہیں ان کو فیصلے کرنے میں۔ ہمیں اس لیے مشکل ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، ہمیں بہتر پتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جو فیصلہ کیا اس کے اوپر ہم راضی نہیں ہوتے۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، پریکٹیکلی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ راضی برضا رہنا۔ بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں ایسے معاملات آتے جن جو ہمیں نہیں اچھے لگتے، جو ہمیں صحیح نہیں لگتے، ہماری اپنی مرضی نہیں وہ ہوتی، پھر ہم کتنے راضی رہتے ہیں اللہ سے؟ جب صبر کا موقع آتا ہے کتنی دفعہ صبر کر کے دکھاتے ہیں، جب امتحان آتے ہیں تو کتنی دفعہ ان میں منہ کو زپ اپ کر کے اور پھر چلتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہم پڑھتے ہیں ہم کتنی دفعہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبیوں کے حالات دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کبھی کوئی ریسٹ نہیں ہے، ہمیں ریسٹ والی زندگی نہیں ہے، ریلیکسیشن کہیں نہیں ہے، امتحان، آزمائش، مشکل، ایک مشکل، دوسری مشکل، مشن ہے، مشن والی زندگی ہے، ان کو کچھ ہم اکمپلش کرنا ہے اس کے لیے وہ چل رہے ہیں، کام ہے، کوئی مقصد والی زندگی ہے، ایسے نہیں بے مقصد ہی گزارے جا رہے ہیں، بے مقصد، بس مقصد کیا ہے، کھا لو، پی لو، پہن لو، روڑ لو، فن کر لو، انجوائے کر لو، ویکیشن کر لو، یہ برف میری زندگی کا مقصد، یہ نہیں ہے ان کا۔ اور کہیں یہ نہیں ہے کہ ہائے کاش ایسا نہ ہوتا، تو ویسا نہ ہوتا، تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، کہیں یہ نہیں۔ یہ ہے نبیوں والی زندگی، یہ ہے اس کا خلاصہ، جو یہاں تک یہ قصے مکمل ہوئے ہیں نبیوں کے، اس میں سے اپنے لیے سبق لیں، بار بار ان کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، دیکھیں کہ کہاں ہے ان کی زندگی اور کہاں ہے میری زندگی، اور ان کی جو دعوت ہے اور ان کی جو ان کے اوپر حالات آئے وہ ان کا جائزہ لیں، یہ نا پھر یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، یہ پڑھ پڑھ کے بس آگے جانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑا سوچنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آگے جو ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ اب اینڈ ہے سورہ کا، اور اس میں جیسے شروع کے اندر تھا اسی طرح وہی موضوع اب آخر میں، یہ آیت 149 سے لے کے اینڈ تک رہے گا، اب یہ نبیوں کے قصے یہاں پہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب قریش مکہ سے پھر خطاب ہے, فاستفتیہم, بس پوچھے ان سے, اے نبی آپ ان قریش مکہ سے یہ سوال کریں, علی ربی کل بنا تو, کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں, ولہم البنون, اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ اپنے لیے تو تم بیٹی پسند نہیں کرتے, تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے جب تمہیں پتا چلتا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہو گئی. وہ لوگ تو بیٹیوں کو بہت برا سمجھتے تھے نا. ویسے ہم اب جس ایج میں, شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس میں عورت کو ڈونٹ تھنک کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنی زیادہ یعنی عزت ملی ہوگی یا کچھ اس کو تھوڑا ملا, یا تو اسلام نے دیا, نہیں تو باقی جو ڈارک ایجز اسلام سے پہلے کی بھی اور ایون بعد میں بھی جو غیر مسلم قوموں کے اندر عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, اور آج تک آپ دیکھیں کہ ہندو کلچر میں جس طرح سے ایک بیٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے, وہ سب کو پتہ ہے. نہیں, کوئی رائٹس نہیں تھے عورتوں کے, بس عورتوں کو ایسے سمجھا جاتا کہ یہ کوئی چیز ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کو, نہ کوئی ووٹ, ووٹ تو بہت بات کی بات ہے, ووٹ کا کوئی حق نہیں تھا اسے پہلے. اگر آپ پیچھے کی تاریخ میں دیکھیں, یہ منگولز کی یا کچھ ہے ان کے بارے میں میں نے دیکھا تھا, پڑھا تھا, تو عورت کا اتنا برا حال تھا, اس قدر ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا کہ انسان کہتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں پیدا ہو گئے. اتنا برا حال عورتوں کا, یعنی کہ کسی طرح ان کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا, اتنی ان کو مطلب کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی. لیکن اللہ تعالی نے عورت کو, لڑکی کو, بیٹی کو, جس بھی روپ میں ایک عورت ہوتی ہے, اس کو اس قدر عزت اور اکرام دیا ہے جو کسی اور مذہب میں اس طرح سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چار بیٹیاں تھیں, بیٹیوں کے ساتھ اتنا پیار فرماتے تھے, ان کی اتنی عزت فرماتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, کوئی اس کو تکلیف دے گا تو وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اتنا زیادہ ان کے ساتھ پیار کرتے تھے. اسلام سکھاتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیوں کی پرورش جس نے کی اس کے لیے یہ بشارت دی ہے کہ وہ اور میں اس طرح سے ہوں گے, جنت میں داخل ہوں گے اس طرح سے, اور اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کے بتایا کہ ان کی پرورش کی, وہ بالغ ہو گئی, ان کا یعنی ساری ان کی ذمہ داری پوری کی, تو اس طرح سے میں اور وہ ہوں گے. اس کو اتنا زیادہ یعنی نیکی کا کام بتایا. تو وہ لوگ بہت زیادہ بیٹیوں کے معاملے میں آپ کو پتا ہے زندہ درگور کر دیتے تھے, زندہ ہی دفن کر دیتے تھے ان کو, اپنے لیے تو اتنا منحوس سمجھتے تھے بیٹی کو, اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں بتاتے ہو. کیا کہتے تھے کہ جو ملائکہ فرشتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں, یہ کہتے تھے. ام خلقنا الملائکہ تھا اناثا وہم شاہدون, اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا, وہ کیا دیکھ رہے تھے یہ بات, وہ اس کے گواہ تھے, ان کو پتا ہے, وہ جب اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا تھا فرشتوں کو تو ان کو پتا ہے کہ وہ لڑکیاں اللہ نے بنائی ہیں, فرشتوں کی تو کوئی جینڈر نہیں ہے نا, تو ان کو پتا ہے, پتا چل گیا کہ وہ لڑکیاں تھیں جو انہوں نے بیٹیاں بنا کے رکھ دی اللہ کی. دیکھیے اللہ کے لیے تو اولاد ٹھہرانا ہی بہت سخت گناہ کی بات ہے, حرام ہے, اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. تو اوپر سے یہ کرنا کہ وہ جو اپنے لیے نہیں پسند وہ اللہ کے لیے بنا لینا, خود اپنے لیے بیٹیاں نہیں پسند, یہ یہاں پہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹے بناتے تو ٹھیک تھا, وہ تو اللہ تعالیٰ کا غضب اسی طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا یا عزیر علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا قرار دے دیا, تو اللہ تعالیٰ کا غصہ غضب ان کے اوپر بھی اسی طرح ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا, لیکن اس سے بھی زیادہ گھٹیا بات یہ ہو گئی کہ تم اللہ کے لیے وہ چیز دیتے ہو جو کہ اپنے لیے بھی نہیں پسند کرتے. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ہاں کوئی بیٹی کو ناپسند کیا گیا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں کر رہے ہو, اللہ کے لیے اولاد کرنا ہی یہی بری بات ہے. صرف ان کی بات کی جا رہی کہ تم اپنے لیے اس کو برا سمجھتے ہو. الا خبردار انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ, کہ بے شک وہ افترا پر دازی کر رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد لی ہے, ولد اللہ, اللہ کی اولاد ہوئی ہے, جب وہ یہ کہتے ہیں. یہ بہت بڑا عفق ہے, بہتان ہے, جھوٹ ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں. یعنی یہ بات کرنا کہ اللہ کی اولاد ہے, یہ اس قدر بڑا جھوٹ ہے. یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں یہ بات کو؟ اس کے لیے آگے دلائل دیے گئے ہیں اس بات کے اوپر, آگے اگلی جو آیات ہیں. اصطفی البناتی علی البنین, کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ اگر اس نے اپنے لیے کوئی چننا ہوتا تو وہ جو اس کی مرضی ہوتی وہ چن لیتا. وہ جو با اختیار ہے, اس کے پاس اختیار ہے, جو چاہے اپنے لیے بنا لیتا. تو اس نے اپنے لیے وہ چیزیں بنائی جو تم اپنے لیے بھی نہیں پسند کرتے. تم اپنے لیے, تم کوئی اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتے, پھر بھی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے. تو کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ اگر اس نے کرنا ہوتا, اپنی کوئی اولاد بنانی ہوتی, تو وہ ان کو بناتا جو کوئی اسٹرانگ ہوتے, جو کوئی اس کو اس کا بازو بنتے, جیسے تم اپنے لیے کرتے. لیکن اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اس کی, وہ اس سے پاک ہے, کیونکہ وہ ہر کمزوری سے, ہر ضعف سے پاک ہے. اس کو اولاد کی حاجت ہی نہیں. اولاد کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں یہ بیٹے ہمارا بازو بنیں گے, ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے, ہمارے فلاں بنیں گے, ہمارا نام آگے لے کے چلیں گے. ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو لاحق ہو کہ اس کو اولاد کی ضرورت پڑے. ما لکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا تمہیں, تم کیسے فیصلے کرتے ہو, تم کدھر سے یہ باتیں نہیں, کس طرح تم یہ ڈیسیژنز لیتے ہو, کیسے ڈیسائڈ کرتے ہو کہ اللہ کے لیے ہم بیٹیاں بنا دیتے ہیں فرشتوں کو؟ افلا تذکرون, کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے, کیا تم بات ہوش نہیں آتا تمہیں یہ بات سے؟ ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کھلی, کوئی اس کی دلیل لے کر آؤ کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کی اولاد ہیں. کہیں سے کوئی دلیل لے کر آؤ, کوئی عقلی بات, کوئی لاجک لے کر آؤ, کوئی بات لے کر آؤ. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین, بس لے آؤ اپنی کتاب کو اگر تم سچے ہو. اگر تمہیں تو دلیل نہیں ملتی, کوئی کتاب ہی لا کے دکھا دو, کوئی ریٹن پروف دکھا دو. دیکھیں ہر چیز کو آپ جب پروف کرنا چاہتے ہیں تو یا تو عقل سے پروف کرتے ہیں, یا پھر آپ اس کی کوئی ریفرنس لے کر آتے ہیں. جی دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں, کوئی الہامی کتاب لے آؤ, کوئی اللہ کی طرف سے کتاب اتری ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ ہاں اللہ نے ایسا کیا ہے, تو تم بات سمجھ آتی ہے. تم کچھ دکھاؤ تو صحیح لا کے. یہ چیلنج کیا گیا ان کو کہ تم اپنی اس بات کی کوئی دلیل تو لاؤ. اب وہ بے بس ہے, ہم کدھر سے لے کر آئے, عقل بھی نہیں یہ بات کو سمجھتی, اور نہ ہی کسی کتاب میں لکھا. اگر تم سچے ہو تو لاؤ. یہ کتنا بھونڈا عقیدہ تھا نا. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا, اور انہوں نے بنا رکھا اس کے درمیان اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ. استغفر اللہ ربی, مطلب بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کہ وہ کہتے تھے کہ جن جو ہے نا وہ اللہ کے, استغفر اللہ نعوذ باللہ, کہ اللہ کے سسرالی ہیں. تو جنوں کے ساتھ اللہ کی رشتے داری ہے ان سے, تو پھر آگے پھر یہ ملائکہ جو ہے وہ بیٹیاں پیدا ہوئیں. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ البتہ تحقیق جان لیا جنوں نے کہ بے شک وہ تو حاضر کیے جانے والے ہیں. جنوں کو تو یہ بات پتا ہے کہ ان کو اللہ نے سزا کے لیے حاضر کرنا ہے, حساب کے لیے حاضر کرنا ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ کی ان کے ساتھ رشتہ داری ہے, تو اللہ کیوں پھر اپنے رشتہ داروں کو کھڑا کر کے وہاں پہ ان سے حساب کتاب اور ان کو سزا دے گا؟ جنوں کو تو خوب پتا ہے کہ ان کو اللہ کے آگے کھڑا کیا جائے گا, ان کو یہ بات پتا ہے, لیکن تم یہ بات بنا رہے ہو کہ وہ اللہ کے رشتہ دار. استغفر اللہ. مشرقین کے نا تین قبائل تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنات کے ساتھ رشتہ داری ہے, اور یہ فرشتے بیٹیاں ہیں اور ایسے ہیں. سبحان اللہ اما یصفون, پاک ہے اللہ جس سے وہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ جتنی باتیں یہ رشتہ داری کی یا ملائکہ اللہ کی بیٹیاں, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالا ہے, پاک ہے, ایسی کوئی بھی بات نہیں. یہ سب ان کی من گھڑت باتیں ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, مگر وہ جو بندے اس کے خالص ہیں چنے. یہ اب پچھلی بات سے آ رہا ہے کہ وہ جن تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حاضر کرے گا, اور ان کو پتا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اور جنوں کی کوئی رشتہ داری نکالتے ہیں, مگر ایسے بندے جو خالص ہیں, वो इन बातों से पाक है, वो ऐसे अकीदे नहीं रखते। ये पिछली बात की, ये बीच में एक जुमला ऐसे आया जिसको कहते हैं कि जैसे हम कोई बात करते करते बीच में कहते ना अस्तग़फिरुल्लाह ऐसे हो गया, या अल्लाह समझे उसको, या फिर आगे फिर बात बयान करना शुरू करते। इसी तरह ये आयत बीच में इस तरह से है कि सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, कि वो कैसी बातें करते हैं, अल्लाह तो पाक ऐसे जो वो बयान करते हैं, और अल्लाह के जो खालिस बंदे हैं ना, चुने हुए बंदे हैं, वो इस तरह के अकीदों से पाक है, वो इस तरह की बातें नहीं करते। فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ, بس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی تم بھی اور تمہارے یہ جھوٹے معبود بھی, یہ کیا ہے, مَا أَنْتُمْ, نہیں تم, یعنی کون, مشرکین, یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں, تم بھی اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو, تم لوگ نہیں, علیہ بھی فاتنین, اس کے خلاف بہکانے والے, یعنی تم جتنی مرضی کوشش کر لو, تم یہ مخلص بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں نا, جن کی بات یہ ہوئی آیت 160 میں, تم اور تمہارے یہ معبود ان کو نہیں بہکا سکتے, ان کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے کہ وہ تمہاری باتوں میں آ جائیں اور وہ بھی یہ بات سمجھنے لگیں کہ ہاں واقعی تم تو صحیح کہہ رہے ہو, نہیں, وہ خالص ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو خالص بندے ہیں نا, ان کی یہاں پہ تعریف ہے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کی باتوں میں نہیں آ جاتے کہ ان کو دیکھ کے متاثر ہو جائیں, یا ان کے بتوں کو دیکھ کے, یا ان کی جو جس طرح یہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں ان کو, جیسے ان کو رنگ برنگے کپڑے اور زیور اور ایسے پہنا کے اور ایسے کر کے کھڑا کر دیتے ہیں, پھر وہ ان سے متاثر ہو کہیں کہ ہائے کتنا اچھا ان کی عبادت ہے, اس طرح سے ہم بھی کریں تو کتنا مزہ آئے, وہ اس طرح سے نہیں ہوتے, وہ ایسے فتنوں میں نہیں پڑتے, وہ ان کو اس طرح کا شوق نہیں ہو جاتا کہ یہ دیکھ کے وہ بھی سوچنے لگے کہ ہم بھی ایسے کریں, تم ان کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے, نہ تم ڈال سکتے اور نہ تمہاری یہ معبود ڈال سکتے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب نکالا تھا تو اس کو بھی فرمایا تھا نا کہ تم میرے خالص بندوں کو نہیں بہکا سکو گے, ان پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں, پھر ابلیس کا بھی ان پہ زور نہیں چلتا, کوئی وہ ان کو زبردستی گمراہ کر کے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم نہیں ان کو فتنے میں ڈال سکتے, الا من ہوا صالح جہنم, مگر وہ جو ہے داخل ہونے والا جہنم میں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یعنی کوئی کسی کو زبردستی سے شرک نہیں کرا سکتا, اس عقیدے پہ نہیں لا سکتا شرک کے, مگر وہ جو خود ہی اس نے پروگرام بنا لیا اور جہنم میں جانے کا, جو کچے ذہن کے کئی لوگ ہوتے نا, بس جو کسی نے کہہ دیا بس اندھا دھند, اچھا ایسے ہو گیا, چلو ایسے کر لیں تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا, بس ان کے پیچھے چل پڑ دوں, پھر کسی اور نے بتا دیا تم یہ کر لو گے نا, تم آ جاؤ وہاں پہ مانگو گی, ایسے کرو گی تو یہ ہو جائے گا, ان کے پیچھے چل پڑے, جو بتاتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, جو خود ہی اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے ہوں, جو خود ہی اپنے آپ, جن کی طبیعت کا نا ایک میلان ہوتا ہے نا, یا بالکل ایسے لوگ جو اندھا دھند لوگوں کے پیچھے چل پڑتے, وہی ہیں پھر جائیں گے وہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں, باقیوں کو نہیں تم فتنے میں ڈال سکتے۔ یعنی یہ کنٹینیویشن ہے نا پچھلی بات کی, اب بات کو سمجھیں آپ, یہاں سے یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ ہمارے جو مخلص بندے ہیں, اور پھر فرمایا ان لوگوں کو جو یہ شرک کرتے ہیں, انکم وما تعبدون, تم بھی اور تمہارے معبود بھی, تم لوگ فتنے میں نہیں ڈال سکتے ان کو, مگر اس کو ہی فتنے میں ڈال سکتے ہو جو خود ہی جہنم کا مسافر ہو, جو خود ہی اس میں داخل ہونے والا ہو, وہ شرک اور کفر کا راستہ اختیار کرے گا۔ وما منا الا له مقام معلوم, یہ بات اب فرشتوں کی ہے, فرشتے جن کو کہ تم کہتے ہو کہ یہ استغفر اللہ کی بیٹیاں, وہ خود کہتے ہیں کہ وما منا, نہیں ہم میں سے کوئی, الا مگر لہو مقام معلوم, مگر اس کا ایک مقام ہے, اس کی ایک جگہ ہے, فرشتوں کے بھی درجات ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ کا مقام ہے, ان کا مقام اللہ کے ہاں سب کا سیم نہیں ہوتا, کوئی کس درجے پہ یا کوئی کس درجے پہ, جیسے انسانوں میں بھی کوئی پیغمبر ہیں, کوئی اولیاء اللہ ہیں, کوئی صحابہ ہیں, کوئی تابعین ہیں, کوئی اللہ کے چنے ہوئے اور خالص بندے ہیں, تو اس طرح سے سب کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ درجے ہیں نا, تو فرشتوں کے بھی الگ الگ درجے, الگ الگ مقامات ہیں اللہ کے ہاں۔ تو تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں, فرشتے تو کہتے ہیں ہمارے اللہ کے پاس مقام ہے, یہ فرشتوں کا قول ہے. اور آپ کو پتا ہے آسمانوں میں کوئی ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو, رکوع نہ کر رہا ہو, تسبیح نہ کر رہا ہو. نہیں, اتنے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں, اتنے زیادہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کو آپ دیکھیں. اچھا آگے آ رہا ہے, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ, اور بے شک ہم تو البتہ صف بنانے والے ہیں. وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ صفوں میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک بندگی کی علامت ہے نا کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور ایسے عبادت کرنے والی یہ مخلوق ہے. اور وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں ہمارا تو اللہ کے ہاں ہمارا اپنا اپنا ایک مقام ہے, ہم اس طرح سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ ان کو سوچیں کہ ان کو نہ تو کھانا کھانا ہے, نہ ان کے کوئی اولادیں ہوتی ہیں, نہ ان کو کوئی, یہ ظاہر ہے نہ کھاتے ہیں تو ان کو کوئی ایسی حاجت بھی نہیں کوئی ٹوائلٹس کی. وہ پھر کیا کرتے, سارا وقت ان کا ایک ہی کام ہے, تسبیح بیان کرتے رہنا. سارا وقت وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہیں. ان کو یعنی ان کے لیے نہ سونا ہے, نہ ان کے لیے کوئی اور قسم کے کام ہے, ان کا کام ایک ہی ہے ان کے ذمے, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. اب یہ سوچیں انسان تو پھر بھی کسی وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے, لیکن فرشتے ایک پل کے لیے بھی اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں تھی. چاہے وہ فرشتے ان کاموں پہ معمور ہوں, کوئی بادلوں کے اوپر فرشتہ ہے, کوئی موت کا فرشتہ ہے, کوئی اور جتنی طرح کے اور فرشتے کو رزق لے کر آتا ہے, تو ڈفرینٹ کاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ فرشتوں کو معمور کیا ہوا ہے. وہ کام بھی ساتھ کرتے ہیں, ساتھ ان کی تسبیح بھی جاری رہتی. وہ کام ان کو ایسا نہیں ہوتا کہ کام میں مشغول ہوئے تو تسبیح کو بھول گئے. کام ان کو تسبیح سے بے نیاز نہیں کر دیتا, تسبیح جاری رکھتے ہیں اور صفوں میں ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی اور امت کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ ان کی عبادت صفوں میں ہو, سوائے امت محمد کو. اس امت کو صرف یہ شرف دیا گیا کہ آپ بھی اپنی نماز فرشتوں کی نماز کی طرح, ان کی عبادت کی طرح کرو, کہ ہم بھی بالکل ویسے ہی صف بناتے ہیں جیسے کہ فرشتے آسمانوں میں صفیں بناتے ہیں. اور فرشتوں کی صفیں کیسے ہوتی ہیں کہ جیسے ہم نماز میں بناتے ہیں نا, اس طرح سے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں. یعنی کبھی اگر آپ امیجن کرنا چاہیں کہ فرشتے کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو اس طرح سے صفیں بناتے ہیں. عرش کے ارد گرد بھی وہ صفوں میں ہوتے, قطار در قطار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھڑے ہوا کرو تو اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو. تو صف آسمانوں میں بھی, آسمانوں میں کس کی ہیں؟ فرشتوں کی. اور زمین پہ مومنوں کی. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. تو نماز میں بھی اور علم حاصل کرنے میں بھی صفیں بنانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو صحابہ بیٹھتے تھے تو وہ اس طرح سے بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں, اس طرح سائلنٹ, اور کوئی موومنٹ نہیں ہوتی تھی. اور ایک طرف سے بیٹھنے شروع کرتے تھے اور اس طرح سے وہ صف میں بیٹھا کرتے تھے, ساتھ ساتھ جڑ کے. یہ پسندیدہ ہے لائن اپ ہونا. دیکھیں جو ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا, ہم لائن اپ ہوں, ہم کیو بنائیں. تو جب ہم اپنے دین سے دور ہونے لگے تو پھر ہماری صفیں بھی ختم ہو گئی ہیں. اسی لیے اب ہم دوسری قوموں کو دیکھیں, وہ صفیں بناتی ہیں, یعنی وہ لائن اپ ہو کے ہر کام کرتی ہیں, وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو صف بنانے کو بھی ایک عبادت سمجھیں, کیونکہ یہ ہمیں ہماری عبادت کا حصہ ہے. حدیث میں اپنی صفوں میں اعتدال پیدا کرو. صف بندی اسلام کا خاصہ ہے, یعنی یہ اسپیسیفک اسلام کی ایک خاص بات ہے. حسن صلات جو ہے اقامت صفوف سے ہے. حسن صلات جو ہے, حسن صلات اس بیوٹی آف نماز, وہ اس سے ہے جو آپ کی صفے سیدھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ اوپر کیمرے سے بھی دکھاتے ہیں, کبھی حرم دکھاتے ہیں کبھی کہیں, تو وہ جو صفوں کی سٹریٹنس ہوتی ہے وہ کتنا پیارا منظر پیش کرتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ یہ سوچیں ذہن میں لے کر آئیں کہ وہیں پہ لوگ ایسے ہی ہجوم کی صورت میں کھڑے ہوں, جیسے طواف کر رہے تھے تو کوئی لائنیں نہیں ہوتی ہیں, ایسے ہی لوگ نمازوں کے لیے کھڑے ہوں, تو وہ वो खूबसूरत मंजर नहीं होगा, जो ब्यूटी है जो मेसमराइज करती है इंसान को, वो सफ़े ही तो हैं, लेकिन हमें सफ़ी नहीं बनानी आती। अच्छा, अगर आप कुर्सी पे नमाज़ पढ़ते हैं, कुर्सी पे भी नमाज़ पढ़ना कोई हर्ज नहीं है, अगर आप नहीं नीचे बैठ सकते तो ऐसा किया करें कि आप सफ़ में खुद साथ खड़े हो, ना कि आपकी कुर्सी सफ़ में साथ खड़ी हो दूसरे नमाजियों के। अब होता ही है कि हम कुर्सी ऐसे रख लेते हैं कि सफ़ से आगे हम खड़े हुए और कुर्सी हमारी सफ़ के साथ खड़ी हुई, कुर्सी को पीछे रखें और खुद सफ के में मिलके खड़े हों। अगर आप खड़े बिल्कुल नहीं हो सकते, आपने बैठ के ही पढ़नी है सारा टाइम, तो फिर चाहिए कि सफ की एंड पे अपनी कुर्सी रखें ताकि सफ ना बीच में से ब्रेक हो। सफ को सीधा रखना, आगे पीछे ना होना, सफ को ऐसे करना कि ना किसी का सीना आगे हो ना कोई बहुत पीछे हो, पैर से पैर मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, ये है सफ की खूबसूरती और ये है सीधी सफ। बाकी पता नहीं हम क्या बनाते हैं, वो अल्लाह जाने क्या होती हैं, जिसमें कोई कहीं खड़ा हुआ कोई कहीं खड़ा हुआ, और एक सफ मुकम्मल हो तो फिर दूसरी में जाओ। ये नहीं है कि अगली सफें सारी खाली पड़ी हुई हैं, पीछे जाके खड़े हुए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब अगली जो बात है 167 से 169 तक एक ही यानी बात है, वह इन कानू लयकूलूना, और बेशक थे वो अलबत्ता कहते। कौन कहते थे? मुशरिकी ने मक्का। क्या कहते थे? लव अन्ना इंदना विक्रम मिनल अव्वलीन, काश होता हमारे पास, या अगर होता हमारे पास भी जिक्र मिनल अव्वलीन, पिछलों में से, जैसे पिछलों को मिला वैसा हमारे पास भी जिक्र होता। जिक्र का मतलब क्या? किताब या कोई नसीहत की बात। लकुन्ना इबादुल्लाहिल मुखलसीन, तो हम भी हो जाते चुने हुए लोगों में से। यानी जब वो देखते थे ना, ये यहूद को देखते थे, इनको देखते थे कि किस तरह इनके पास किताबें भी आईं, तो कैसे उन्होंने किताबों से सलूक किया और क्या इनके हाल हो गए, तो कहते थे अगर काश हमारे पास भी होती ना कोई किताब, तो देखना तो फिर हम कितने ओबीडियंट होते, हम कैसे चुने हुए होते। ये बातें करना बड़ी आसान होती हैं, ये जब अपनी बारी आती तो पता चलता है कि कौन क्या है। हम भी बनी इसराइल की जब बातें सुनते तो हम कहते हाय ये ऐसे करते थे, अच्छा ये करते थे, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, फिर अपने पैगंबरों के साथ हम होते तो हम तो कभी भी ना करते, हम तो इस तरह करते, हम तो पता नहीं क्या कर देते। अच्छा इन्होंने वो मनोसलवा से ये तंग आ गए थे, इन्होंने ये मांगा था, ये इन्होंने इतनी नाशुक्री की थी, हम होते ना तो हम तो ऐसे करते, खुद जहन में आती ना बातें। लेकिन जब पता चलता है, जब अमल का वक्त आता है, वो देखें कुफारे मक्का ये कहा करते थे कि हम हमारे पास भी अगर जिक्र आ जाता तो हम तो पता नहीं कितने ऊपर मदारिज तय कर लेते, हम कितने खालिस बंदे बन के रहते और दिखाते, फिर पता चलता कि हम क्या हैं। तो लो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो फिर उसके बाद क्या किया? तो पहले ये ख्वाहिशात होनी, फिर उसके बाद अब हम बाज दफा हमारे भी लोग कहते हैं अगर हमारे पास देखिए हमारे पास टाइम होता ना तो फिर आप देखते हम क्या करते, मैंने तो वहां जाके पढ़ना था, मैंने तो ऐसे कर लेना था, बस मेरे पास टाइम नहीं ना मिल रहा है ना। टाइम मिल भी जाता है तो उसके बाद क्या कर रहे होते? फिर वेकेशन पे चले जाते हैं, फिर रिलैक्सेशन शुरू कर देते, फिर क्या करते हैं? अब वो वाली चीजें नहीं भी रही जिनकी वजह से पहले मजबूरी के तौर पर जिनको बयान करते थे, वो नहीं भी नहीं तो फिर भी नहीं इधर को आए। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती, जिन्होंने करना होता है वो हर हाल में ही करते हैं, और जिन्होंने सिर्फ बातें बनानी होती वो कहते हैं हाय ऐसा हो जाए ना, अगर ऐसा हो जाए ना फिर देखना मैं कितना करूंगा, तो वो अगर अगर पे ही रहते हैं। फकफरू बिही फसौफा यालमून, तो उन्होंने कुफर किया साथ इसके, तो अनकरीब वो जान लेंगे। यानी इन्होंने फिर जब जिक्र आ गया बिही साथ इसके, किसके जिक्र के, इन्होंने कुफर किया, इसको फिर मानना ही नहीं जब कुरान आ गया, तो अनकरीब इनको पता चल जाएगा किसका अंजाम क्या हुआ। वलकत सबकत कलिमतुना लिअबादिन अलमुरसलीन, हमारी तो बात पहले गुजर चुकी है हमारे रसूलों के लिए, हमारे बंदों के लिए जो हमारे भेजे हुए थे, उनके लिए हमारी बात गुजर चुकी है। कहाँ गुजर चुकी है? यानी पिछली किताबों में ये बात हमने बता दी हुई है, अपने किन के लिए? अपने उन बंदों के लिए जिनको हमने रसूल बना के भेजा। क्या बात बता दी हुई है? क्या कलिमा है जो गुजर चुका है, या फिर लोहे महफूज में लिखा हुआ अल्लाह ताला ने, या पिछली किताबों में अल्लाह ने नाजिल फरमाया, जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि हमने अपने रसूलों के लिए इस बात को पहले ही लिखा हुआ है। क्या? इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, के बेशक वो मदद दिए जाने वाले हैं। अल्लाह ने उनकी मदद फरमानी है, चाहे हालात कितने भी ऐसे नजर आ रहे हो कि हाय रसूलों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, इस तरह से टॉर्चर हो रहा है, ऐसे लोग सता रहे हैं, उनकी तो मुखालफत ही मुखालफत है, कोई इनकी बात ही नहीं सुन रहा, हाय ये तो बड़े लगता है तो कोई कामयाबी नहीं है इनको, कोई फायदा नहीं है इनका, नहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं वही मदद दिए जाने वाले हैं, वह इन्ना जुंदा ना लहुमुल गालिबून, और अलबत्ता हमारा लश्कर वो ही गालिब आने वाला है। ये अल्लाह ताला का वादा है रसूलों के साथ कि गालिब वही आएंगे, चाहे आपको नजर कैसा भी आ रहा हो कि इनके साथ दो लोग, इनके साथ तीन लोग, ये तो पता नहीं, ये तो हार ही गए, सारी कौम एक तरफ थी, कामयाब तो वो हुए, देखो सारे वो तो इतना बड़ा जत्था थे, नहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं जो हमारा लश्कर है वही कामयाब होने वाला है, वही गालिब आने वाला है, चाहे अब यहाँ पे दुनिया के अंदर आपकी कुछ और नजर आए ना आए, आप देखें कयामत के दिन पैगंबरों का क्या मकाम होगा, और दुनिया में भी आप देखें जब उन जिनके ऊपर अजाब आ गए उनकी क्या जीत हो गई, वो कितने भी बड़े बन के रहते थे, अब फिरौन मर रहा है, वो पानी में डूब रहा है, उसकी क्या जीत हो गई, क्या फतह हो गई उसकी, उधर नाकाम ही हुआ ना। तो अल्लाह ताला का वादा है मदद का उनके साथ जो उसके रसूल है। एक बात और आपको ये बता दूं कि ये वादा सिर्फ रसूलों के साथ नहीं है बल्कि ये ईमान वालों के साथ भी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नकुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब आओगे, तुम ही ऊपर रहोगे अगर तुम मोमिन हो, और फरमाया हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन, हमारे पर हक है मदद करना मोमिनों की, जो मोमिन होते हैं अल्लाह की मदद उनके साथ होती है, चाहे वक्ती तौर पे ऐसा लग रहा हो कि अच्छा ये शिकस्त खा रहे हैं, अच्छा ये इनकी कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है, इनका तो कोई पूछने वाला नहीं है, ये तो बुरे हालों में, लेकिन उन्हीं की मदद होती है बशर्ते के वो मोमिन हो, बशर्ते के उनके ऊपर अंदर ईमान हो, ऐसा नहीं है कि बस नाम के मुसलमान और अपने इस्लाम के अहकामात का मजाक उड़ाने वाले, उनको कोई परवाह नहीं हो इस्लाम की अहकामात की, अल्लाह रसूल ने जो कहा है उससे दूर उनकी जिंदगी नजर आए, उसके बाद कहें हम ही तो मोमिन है ना, दूसरी तरफ तो काफिर है, तो मदद हमारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मोमिन वाकई अगर तुम मोमिन हो तो फिर ये यकीन रखो कि तुम्हारी मदद आएगी, लेकिन अगर मोमिन नहीं हो ना, अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या बताती है, वो तुम मजलूमों को भी गले काट रहे हो, तुम इस कदर जुल्म कर रहे हो, लोगों को आगों में डाल रहे हो, तुम पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हो, फिर कहोगे हम मोमिन है, या फिर कोई ये कहे कि अच्छा ये तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दी है ये तो जालिमाना है, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, या कोई कहे कि ये तो हमारी आजादी खत्म करने वाली चीजें हैं, कोई औरत उठ के कहना शुरू कर, फिर कहे हम तो मोमिन है, हमारा तो दीन कहता है ना अल्लाह मोमिनों की मदद करेगा, तो फिर हमारी मदद क्यों नहीं आती, इसलिए कि तुम्हारा ईमान नहीं है, तुम ईमान के सिर्फ दावेदार हो, तुम मुंह से बोलते हो, तुम इस्लाम लाए हो, ईमान तुम्हारे अंदर नहीं है अभी, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वो ईमान वालों की मदद करे, आपने ईमान को देखना चाहिए, अगर ईमान पक्का है तो फिर कोई फिक्र की बात नहीं, फिर अल्लाह की मदद जरूर आएगी। तो यहां पे असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप ये जो आपकी अभी मुखालफतें कर रहे हैं ना, मत घबराएं, ये अल्लाह का वादा है, पिछले पैगंबरों के साथ भी वादा था, उनकी भी अल्लाह ने मदद की, आपकी भी अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। फतवल्ला अनहुम हत्ताहीन, तो मुंह फेर लो इनसे एक खास वक्त तक, क्या मतलब है, यानी ए नबी आप इनसे एराज करें, आप इस वक्त सब्र करें, एक वक्त मुकरर तक बस आप सबर करें, ये नहीं मानते ना आपकी बात, इतनी आपकी कोशिश के बावजूद नहीं माने, तो आप एक वक्त मुकरर तक, कौन सा था वो वक्त मुकरर, यानी एक वक्त आएगा चाहे अल्लाह ताला इनको मुसलमानों के हाथों शिकस्त दे, या इनकी मौत आ जाए, या इनके ऊपर कोई अजाब आ जाए, उस वक्त तक आप वेट करें। देखिए इससे पता चलता है बाज चीजें जस्ट वेट आउट करनी होती है आपने, उसमें कोई रिएक्शंस नहीं शो करने होते, वो एक तूफान होता है जो गुजर जाता है, लेकिन हम बेसब्री हो जाते हैं उसमें बाज दफा। तो ये है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उनकी इजाएं बहुत थी काफरों की, लेकिन आप जस्ट वेट आउट द टाइम, मुंह फेर लो इनसे का मतलब क्या, वेट आउट, ये टाइम गुजर जाएगा, आप इंतजार करें, आप फॉर द टाइम बीइंग इनको इग्नोर करें, दरगुजर करें इनसे। अब सिर हम फसाऊ फो बसिर, आप देखो इनको तो अनकरीब वो भी देख लेंगे। यहां पे देखो का मतलब क्या, वेट, इंतजार करो, वो भी देख लेंगे कि कब अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आ जाता है। और वाकई फिर बदर में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद आप देखें कि जब उसके बाद के जितने मारके हुए काफरों को, कहीं पे भी यानी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खुली फतह मिल गई हो। आप सीरत में देखते हैं कि उसके बाद काफरों का तो डाउनफॉल ही था ना, हत्ता के मक्का फतह हो गया। आफा भी अजाबीना यस्ताजिलून, क्या भला हमारे अजाब का ये इंतजार कर रहे हैं, इंतजार नहीं जल्दी मचा रहे हैं। क्या हमारे अजाबों को ये मांगते हैं और उसकी जल्दी करते हैं। वो बार बार कहते थे ना, मता हाजल वाद, कब आएगा वो वादे का वक्त, जो तुम इतना हर वक्त कहते हो, तो कब आएगा वो अजाब का वक्त। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ये अजाब ही चाहते हैं, उसकी जल्दी कर रहे हैं। तो जब आ जाएगा ना, फाइजा नजला, फिर जब वो उतरेगा ना अजाब, बिसाहतिहिम, उनके सिहनों में, उनके घर में, फसा असबाहुल मुंतरी, तो बड़ी बुरी सुबह होगी फिर डराए जाने वालों की। मुंजिर नहीं है यहाँ पे, मुंजर है, जिसको डराया जाए। मुंजिर होता तो वो होता कि जो डराने वाला है, यहाँ पे डराने वाले की बात नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह, अगर जरा सी भी ये जेर जबर की हो गई तो फिर मतलब होगा जो डराने वाले, यानी फिर तो वो पैगंबर है जो मुंजिर है। तो ये है जिनको डराया गया, उनकी कितनी बुरी सुबह होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर में गए थे, तो मैंने आपको सीरत में बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाहु अकबर, खैबर बर्बाद हो गया। और यही आयत फरमाई थी कि फैजा नज़ला बिसाहतिहिम फसा सबाहुल मुंतरीन, फिर बड़ी बुरी सुबह होती है डराए जाने वालों की। क्योंकि फिर अजाब की जल्दी तुम मांगते हो, अजाब को जल्दी कहते हो आ जाए, क्यों नहीं आ रही हमारी पकड़। ठीक है, कैसी वैसे हमाकत की बात है कि इंसान अपने लिए पकड़ मांगे जल्दी। इंसान कहे कि कब अजाब आएगा, तो ये तो ऐसे ही है जैसे तुम अजाब को दावत दे रहे हो बार बार मांग के। क्योंकि वो मानते ही नहीं थे, तो इसलिए उनको एक तरह से मजाक करते थे ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, फिर जब अजाब आएगा ना, तो फिर देख लेना कि फिर हाल क्या होता है। वतवल्ला अनहुम हत्ता हीन, ये वही बात है जो पहले गुजरी है कि आप मुंह फेर लें इनसे एक वक्त मुकर्रर तक। ऐ नबी, जो ये कह रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, इसको बस इस वक्त सब्र का घूंट पी ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना घुटता था, तंग होते थे इनकी ये बातों से, इनके ये कहने से, क्यों नहीं लेकर आते अजाब, मजाक उड़ाते थे। आप देखे ना, एक इंसान होने के नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान ही थे ना, ये बातें, ये मजाक, और वो भी अल्लाह के दीन का। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको बड़े आराम से सुन के और काम रहना। ये ऐसी बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को तंग करती थी, घुटन का बायस थी, कि ये मानते भी नहीं है, ऊपर से ये मजाक कर रहे हैं, और ये क्या मांग रहे हैं अपने लिए, अजाब मांग रहे हैं, इनको क्या हो गया है। आप सोचिए, एक बंदा जानता है कि हक क्या है, और दूसरे लगे हुए मुखालफत में, लगे हुए मुखालफत में, तो उसको एक नेचुरल बात है ना कि उसका सीना घुटता है। वो फिर कहता है क्यों नहीं ये मान जाते, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं किस तरह से इनको सीधे रास्ते की तरफ ले आऊं, मैं क्या ऐसा कर लूं। ये एक नेचुरल बात है। और नबी जो सबसे ज्यादा हमदर्द होते हैं अपनी कौमों के, लोगों के, इंसानों के, वो ये नहीं कर सकते कि जाए ये भाड़ में, जहन्नुम में जाए, हमें क्या, मुझे क्या, जब मरेंगे वहां पे जहन्नुम में तो फिर ही इनको पता चलेगा। वो ऐसे नहीं कह सकते। वो कुड़ते हैं, वो जलते हैं इस चीज के अंदर, उनकी खैर ख्वाही में, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत की बहुत खैर होती है। तो ऐ नबी, आप एक वक्त तक इनसे मुंह फेर लो। वो अब सिर्फ सौफा युबसिरून, और देखते रहो अनकरीब वो भी देख लेंगे। तो अब सिर किस माने में है, इंतजार के माने में। आप इंतजार करें, ये भी जल्दी देख लेंगे, इनको जल्दी पता चल जाएगा। अल्लाह अकबर। इंसान चाहता है ना कि बस फौरन फैसला हो जाए। ये आज ये कह रहे हैं ना, इनको जल्दी पता चल जाए, आर हो या पार हो, मामला खत्म हो बस। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता नहीं, अभी इंतजार यही इंतजार था ना जो कि यूनुस अलैहिस्सलाम से नहीं हो सका था। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमाया फसबिर ली हुक्मी रब्बी का वला तकुन का साहिब लहूत, ए नबी आप सबर करें अपने रब के हुक्म का, आप ना हो जाना मछली वाले की तरह, उनकी तरह ना हो जाना कि जल्दी जल्दी में आ गए, जल्दी हो जाए बस। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हालात में थे ना उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह की जात के। अल्लाह ताला ही आयात उतारता था जिससे आपको धारस मिलती थी। कौन थी सपोर्ट वहां पे? कोई भी नहीं था। प्यारी बीवी भी जा चुकी, चचा की सपोर्ट भी खत्म हो गई, कोई नहीं था जो आपको आके बैठ के कोई तसल्लियां देता। कोई अल्लाह ताला कुरान उतारता था उसमें आपकी तसल्लियां होती थी। तो हालात ऐसे थे लेकिन साथ अल्लाह ताला की तरफ से भी देखें कैसी ढारस थी। अल्लाह छोड़ नहीं देता फिर अपने बंदे को, और जिस जिस को भी कभी इस रास्ते में अल्लाह के रास्ते में ढारस चाहिए, तसल्ली चाहिए, डोंट लुक फॉर पीपल के कोई आए अभी मुझे आके मुझे जरा हौसला दे, मुझे समझाए, मुझे जरा तसल्ली दे। नहीं, इंतजार करें, कुरान खोले, ये बेहतरीन तसल्ली है। इसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हुई, इसी से आपके सहाबा कराम ने हौसला लिया, इसी से आज के लोग हौसला ले सकते। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अब ये जो तीन आयात है बहुत इंपॉर्टेंट आयते हैं, याद कर लेने वाली आयते हैं। वो जो भी बातें कर रहे ए नबी अल्लाह के मुतल्लिक कर रहे हैं। देखें ये भी बात सुनना एक दाई दीन के लिए कितना मुश्किल होता है कि कोई लोग इतनी फजूल और घटिया बातें अल्लाह के मुतल्लिक कर रहे हैं, इतनी गंदी बात कह रहे हैं, शिर्क की बातें कर रहे हो, तो सोचें एक दाई दीन के दिल पे क्या गुजरती होगी। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह पाक है इससे, वो जो रब्बिल इज्जत ही है, इज्जत का मालिक है, इससे पाक है जो ये बातें बना रहे हैं, जो ये बुरी बातें कह रहे हैं। वो क्या बातें कहते थे? कभी अल्लाह की औलाद ठहराते थे, कभी उसकी रिश्तेदारियां बताते थे, कभी कुछ बातें करते थे। अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इज्जत नहीं घटती, वो इज्जतों का मालिक है, सारी इज्जतें उसके पास है। ये जो लोग सोचते हैं ना कि इज्जत जो चीज है ये दुनिया से मिलती है, ये लोगों के दरवाजे खटखटाने से मिलती है, ये उसकी चापलूसियां करने से मिलती है, ये उसकी खुशामदें करने से मिलती है, ये उनके साथ कॉन्टेक्ट्स बनाने से मिलती है। बड़े बड़े लोगों से, आप मालदार लोगों से, वजीरों अमीरों से कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे ना तो आपकी भी इज्जत हो जाएगी। उनके साथ उठे बैठे, हमें ऐसे लोगों के साथ क्यों उठे बैठे जिनके पास कुछ नहीं है? तो हम उस उन ओहदों वालों के साथ, कुर्सियों वालों के साथ बैठेंगे तो हमारी इज्जत होगी? इज्जत ऐसे नहीं है। इज्जत देने की ताकत, इज्जत वो चीज है जो मिलती है उस दर से, इज्जत का खजाना उसके पास है जो रब्बुल इज्जा है, जो इज्जतों का मालिक है। वो इज्जत किसी को देता है। वह तो इज्जु मन तशाओ वह तो जिल्लु मन तशाओ। आप बैठ जाए जितने मर्जी वजीरों अमीरों के साथ, इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत तब मिलेगी जब वो रब्बुल इज्जत आपको इज्जत देगा। तो फिर क्या जरूरत है खाम खा अपने आप को भी बेइज्जत करना, कभी किसी को, कभी किसी को कुछ करने की कोई, कभी किसी के दरवाजे पे, कभी किसी के साथ मुरासिम बना रहे, क्या जरूरत है? रब्बुल इज्जत से इज्जत मांगे कि वो इज्जत दे हमें? सारे इज्जत के खजाने तो अल्लाह तेरे पास है, इनके पास क्या है? वो तो खुद बेचारे इज्जत के मोहताज हैं, उनको खुद अल्लाह से इज्जत चाहिए, वो हमें कैसे इज्जत देंगे? हम कितनी बेवकूफी करते हैं जब यहां हम समझते हैं कि यहां से इज्जतें मिलेंगी मुझे। अच्छा जी मैं उसके साथ बैठ जाऊंगी तो मुझे इज्जत, मेरी भी इज्जत हो जाएगी, मेरी भी इज्जत बन जाएगी। मैं अच्छे कपड़े पहन लूंगी तो मेरी इज्जत बनेगी, मैं ये गाड़ी ले लूंगी तो मेरी इज्जत बनेगी। कैसे? जब तक रब्बुल इज्जत इज्जत ना दे। फिरौन से ज्यादा बड़ी किसके पास माल था और कुर्सी थी और वो था सब ओहदा था, और कारून से ज्यादा किसके पास माल था? हाँ, इज्जतें मिल गई उनको फिर, और उनके साथ बैठने वालों को भी, जो नाम लेता उनको बुरी तरह ही लेता। क्या इज्जत मिली उनको, ना उनको तो ना उनके साथ वालों को। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला पाक है, वो रब्बुल इज्जत है, इनके कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसकी इज्जत में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इज्जतों का मालिक है। वस्सलामुन अल मुरसलीन, और रसूलों के ऊपर बातें मनाते हैं और रसूलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने उनको सलामती दी है और उनको सलाम भेजा है, उनके ऊपर अलग अलग नाम लेके भी। पूरी सूरत में आपने देखा है कि रसूलों के ऊपर अल्लाह ताला ने सलाम भेजा, कि सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला इलियासी, सबके ऊपर सलाम अल्लाह ताला भेज रहे हैं। यहाँ पे सब रसूलों पर सलाम भेज दिया, तमाम रसूलों को यहाँ पे जमा कर दिया गया कि सब के ऊपर सलाम है अल्लाह ताला का, दुनिया में भी और आखरत में भी। सलाम का मतलब वो सलाम नहीं जैसे हम बस एक सलाम, तो फिर सलाम क्या, किसी को कभी किसी के साथ कितना ही दिल के अंदर कीने और बोझ भरे हो और नफरत हो उससे और उसको नुकसान पहुंचाने का इरादा भी हो और फिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ऐसा नहीं है, ये वो सलाम नहीं है। सलाम का मतलब सलामती है और अल्लाह ने उनको सलामती दे दी दुनिया और आखरत में। जिसको अल्लाह सलामती दे दे उसको फिर क्या डर रह गया। अल्लाहु अकबर। तो जो रब की तरफ बुलाते हैं ना उनको देखो रब कैसे सलामती दे देता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहानों का। ओके, क्यों है उसका शुक्र, उसकी तारीफ, हम्द का मतलब शुक्र तारीफ, तो क्यों है, इसलिए है कि उसके एहसान है कि उसने रसूलों को मबूस किया इंसानियत की तरफ और इंसानों को हिदायत देने के लिए, उनको जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए, उनको जहन्नम से बचाने के लिए रसूलों के जरिए कलाम फरमाया इंसानियत से। ये उसका बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र है उस रब का। ये अब तीन जो आयात हैं ये मजलिस के खात्मे की भी दुआओं में से एक दुआ है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस बात से खुश हो होना चाहता है कि उसका मीजान अजर से भर जाए, किस बात से खुश होना चाहता है कि उसका मीजान अजर से भर जाए। आप चाहते हैं कि आपका मीजान अजर से भर जाए, आप इस बात से खुश होंगे तो क्या करना है फिर क्यामत के दिन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मीजान अजर से भर जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नुस्खा बता दिया कि उसको चाहिए कि वो अपनी मजलिस के इख्तिताम पर ये कहे सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी कितना कहना आसान है ना, लेकिन फिर भी हमसे रह जाता है, भूल जाता है, तो इसलिए हमें एक दूसरे को याद कराना है कि हम ये बात कहें। अगर याद नहीं है तो फिर कोई, जिसको एक को याद हो उसको कह दें, वो आगे 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 पढ़ दे तो बाकी पीछे लोग पढ़ लें ताकि हमें तब तक याद हो जाए। इसी तरह नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीन आयात तिलावत फरमाते थे और मजलिस के खात्मे की दुआ के ऊपर एक ये भी और हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स चाहता है क़यामत के दिन पूरे नाप से उसको अजर नाप के दिया जाए उसे मजलिस से उठते वक्त, ये अपना आखिरी कलाम बनाना चाहिए, यानी ये मजलिस के खात्मे पे ये दुआ करनी चाहिए, आखिरी कलाम ये होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस सूरत का हक अदा करने वाला बना दे कि हम इस सूरत में जितनी प्यारी प्यारी बातें आई हैं अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें समझाया, जैसे हक होना चाहिए था वैसे तो नहीं हो सका समझने का या समझाने का बताने का, लेकिन अल्लाह ताला इसमें जितनी हमने बातें की हैं, जो पैगंबरों के किस्से आए हैं, अल्लाह ताला इससे बेहतरीन हमारी ज़िंदगी में रहनुमाई बना दे। अल्लाह ताला हमें उनके उसवा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शिर्क से हमें दूर रखे, हर किस्म के शिर्क से अल्लाह हमें, हमारे अकीदे में इखलास हमें अता फरमाए, हमारे आमाल में इखलास हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें साबित कदमी अता फरमाए नेकियों के ऊपर। या अल्लाह ताला जैसे तेरे ये पैगंबर थे जो इनकी क्वालिटीज़ थी अल्लाह ताला वो हमारे अंदर पैदा फरमा दे, या हम इनको पढ़ने वाले ना सिर्फ हों इनकी ज़िंदगियों को बल्कि इनकी ज़िंदगियों को अपनाने वाले बन जाए। अल्लाह ताला इस काफ़िले में हमें शामिल कर देना, या अल्लाह पैगंबरों के काफ़िले में हमें शामिल कर देना। चाहे हम पीछे ही रहने वाले हों, लेकिन अल्लाह इस काफले में हमें भी शामिल कर दे, जो तेरे प्यारों का काफला है, जो अनंत अलैहिम का काफला है, अल्लाह जो तेरे मुरसलीन का काफला है, अल्लाह इसमें हमें शामिल कर देना। अल्लाह हमें दाईयाने दीन बना देना, अपने दीन की पुकार देने वाला बना देना, हम जगह जगह जहां जाए तेरे दीन की पुकार देते रहे, अल्लाह तेरी तरफ बुलाने वाले बन जाए, अल्लाह हमें वो बना देना। अल्लाह हमारा इसका पढ़ना कबूल फरमाना, अल्लाह ताला इसको सीखना कबूल फरमाना, अल्लाह इसको हमारे अमल में ले आना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने इन आयात की।
وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.